يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، اب آپ دیکھیے کہ اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور جہاد میں کامیابی کے لیے قرآنی ہدایات دی جا رہی ہیں. سب سے پہلے کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اور کیا بات سب سے پہلے کہی؟ اذا لقیتم فئتن، کہ جب تم کسی گروہ سے مقابلہ کرو، جب تمہارا آمنا سامنا کسی گروہ سے ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یعنی جب اب جنگ ہو گئی ہے، جنگ شروع ہو رہی ہے، اب موقع ایسا آ گیا ہے، نمبر ون کیا کرنا؟ فثبتوا، تو ثابت قدم رہنا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ثبات، کہ جم جانا. تو ثبات سے مراد کیا ہے؟ دل کا جمنا بھی اور قدموں کا جمنا بھی، ثبات قلب اور ثبات قدم دونوں داخل ہیں. جس شخص کا دل مضبوط نہ ہو اور ثابت نہ ہو، تو اس کے قدم اور دوسرے اعضاء کبھی جم نہیں سکتے. تو پہلی چیز جو بہت اہم ہے، جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ ثبات قلب، کہ دل جم جائے، دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں میں حق کے لیے کام کر رہا ہوں، میں حق کے لیے لڑ رہی ہوں، میں حق کے لیے محنت کر رہی ہوں. دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت، تھک جائے دل کہ ہاں یہ صحیح ہے جو میں کر رہی ہوں، ہے نا. بے شک آپ قرآن کی کلاس میں ہی شرکت کر رہے ہیں، آپ کا دل جو ہے نا، اس کے اندر ایک جماؤ ہونا چاہیے. آندھی آئے، طوفان آئے، برفیں گریں، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، مسائل، مشکلات، مہمان آ رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، مجھے اس کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو سب سے پہلے دل پاور ضروری ہے، حوصلہ، دل کی مضبوطی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس چیز پر دل ٹھک گیا ہے نا، جسم کے اعضاء اس کا ساتھ دینے لگے، یعنی ثبات، قدم قدم اس کے ایک پر ڈٹ جائے. اور جب تک کسی کے پاس دل کی مضبوطی اور قدموں کی مضبوطی نہیں ہوتی، ثبات قلب اور ثبات قدم نہیں اس کے پاس ہوتے، اور باقی اس کے پاس کتنی چیزیں کیوں نہ ہوں، مثلاً اس زمانے میں اگر لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتے، تعداد ہوتی، تو بھی جو ہے نا فتح نہیں ہو سکتی تھی، ہے نا. آج کے دور میں اب لوگوں کے پاس کمپیوٹر بھی ہے اور گاڑی بھی ہے، رائڈ مل بھی رہی ہے، اگر کوئی فیس نہیں دے سکتا، فیس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل ہی نہیں ابھی راضی نا، اس دل کا کیا کرے، ہے نا. دل کے اندر جب دل راضی نہیں تو پھر 100 بہانے، اور جب دل راضی ہو جاتا ہے سارے بہانے ختم ہو جاتے ہیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے پہلی چیز، فثبتوا. دوسری چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جب جہاد کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، خواہ وہ میدان کا جہاد ہو، جنگ ہو رہی ہے، یعنی تلوار بھی سیف آپ کر رہے ہیں، یا جس بھی لحاظ سے عملی جہاد کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ کفر کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے، نفس کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے، شیطان کے خلاف کیا جا رہا ہے، دنیا میں بے حیائی کے خلاف آپ کر رہے ہیں، تو یہ ان سب کے جو ہے نا یہ قرآنی اصول ہیں. دوسرا ہے وذکر اللہ، کہ ذکر کرو اللہ کا. تو یہ ہتھیار بہت اہم ہے، دنیا اس ہتھیار کو نہیں جانتی جو کافر ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ ہتھیار بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پہ لوگ اسلحہ، تعداد، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی ہتھیار ہے نا، اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ میدان میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اذا لقیتم فئتن، تم میدان میں کھڑے ہو، دشمن تمہارے سامنے ہے، تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. آپ دیکھیے اللہ کی یاد اور اللہ پر اعتماد اور اللہ پر ایمان وہ بجلی کی طاقت ہے کہ ایک ضعیف انسان جو ہے وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے. کیسی مصیبت اور پریشانی ہو، لیکن اللہ کی یاد سب کو ہوا میں اڑا دیتی ہے، اور انسان کے دل کو مضبوط اور ثابت قدم رکھتی ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے، یہ افغانستان کے جو مسلمان تھے، انہوں نے بموں کا مقابلہ، جہازوں کا مقابلہ پتھروں سے کیا، تو ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر ایمانی قوت تھی، ذکر اللہ، اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پر یقین تھا، اور ایک سپر طاقت پاش پاش ہو گئی، ہے نا، رشیا جو ہے. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد. اچھا، کافروں کا حال کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ جنگ کرتے تھے تو شاعر جنگ کے وقت اپنے محبوب کو یاد کرتے تھے. ان کی شاعری میں اگر آپ حماسہ پڑھیں, حماسہ شاعری کا مجموعہ ہے ان کی کا, جس میں جنگ کے بہت سے حالات ہیں, اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ایسے شعر ملتے ہیں کہ وہ جنگ کی حالت میں جو ہے نا شاعر اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے کہ تیری یاد جو ہے میں نے تجھے اس وقت یاد کیا. شعر کا مصرعہ ہے عربی کا, میں نے تجھے اس وقت یاد کیا جب نیزے ہمارے درمیان جو تھے وہ لچک رہے تھے. تو محبوب کی یاد تیروں تلواروں اور نیزوں کے درمیان کیا ہے کہ مشن پر قائم رکھے. تو وہ تو اپنے جو ہے وہ یعنی عاشق اور محبوب کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن عاشق کون سا ہے اور محبوب کون ہے؟ مجازی. تو جب حقیقی محبوب کو یاد کیا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے, یعنی مشن کی طرف, رب کی رضا کی طرف جب توجہ کی جائے, تو پھر کیا ہے انسان جو ہے وہ اس میں مضبوطی آتی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ دوسری قرآنی صفت جو ذکر اللہ ہے, اس کی ایک شرط بھی ہے, اور وہ ہے کثیرن, کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں, کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ جب عبادت کرو تو یہ نہیں کہا صلاتن کثیرہ و صیامن کثیرہ, کہ روزے بہت زیادہ رکھو اور نمازیں بہت زیادہ پڑھو. یہ کسی بھی عبادت میں اللہ نے کثرت کا ذکر نہیں کیا, لیکن یہ اللہ کا ذکر ایسا ذکر, ایسی عبادت ہے جس کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نہ تو یہ بڑی آسان عبادت ہے, نہ اس میں وقت خرچ ہوتا ہے, نہ محنت, اور آپ کھانا بھی پکا رہے ہیں, آپ جنگ بھی کر رہے ہیں, آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں, آپ کپڑے بھی استری کر رہے ہیں, آپ سبزی بھی کاٹ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو کیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کوئی شرط نہیں ہے اس کی, کوئی پابندی نہیں اللہ کے ذکر کی, نہ وضو, نہ طہارت, نہ لباس, نہ قبلہ, اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. کیوں؟ ہر شخص باوضو ہے, بے وضو ہے, کھڑا, بیٹھا, لیٹا, اٹھا, کسی بھی پہلو پر ہے, تو وہ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے. اور یہ زبان سے ہو سکتا ہے, یہ دل سے بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ہے نا زبان سے ذکر کرنا, ایک ہے دل سے کرنا. ایک ذکر کی اور قسم ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہر جائز کام جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے وہ بھی ذکر ہے, اور اس کو عملی ذکر کہتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی سو رہا ہے, اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو بھی ذاکر کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہے نا, تاکہ وہ رات کے وقت سو جائے اور اس پھر سے قوت حاصل کرے, اور پھر جو فرائض اللہ نے اس کو دیے ہیں اس کو وہ ادا کر سکے, ہے نا. بعض روایات میں آتا ہے نوم العالم عبادہ, کہ عالم کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم جو ہے اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا سونا اور جاگنا سب اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہوتا ہے. اب اس کا یہ نہیں مطلب آپ جاتے ہی سو جائیں سارے, یہ آج ہم نے یہ پڑھ لیا کہ سونا عبادت ہے, اور 8 گھنٹے سوئیں تو پھر, اور 6 گھنٹے سوئیں تو پھر, اور 10 گھنٹے سوئیں تو پھر, اور کہ ٹیچر نے بتا دیا کہ سونا بھی عبادت ہے. اصل مطلب کیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے, ضرورت کے لحاظ سے جب قرآن و سنت جو ہے اس کو فالو اپ کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں دراصل وہ ذاکرین کی لسٹ میں آپ شامل ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ یہ مطلب ہے. تو میدان جنگ میں جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا جو حکم ہے, اس کا یہ نہیں مطلب اب مجاہدین جنگ کو چھوڑ دیں اور سائڈ پر ہو کر ذکر کرنا شروع کر دیں, ہے نا, بلکہ مطلب کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کریں گے کہ واقعی اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں, اور وہ جو جنگی اصول ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں. نفس تو مطلب نہیں ہے, ان کا نفس مقصود تو نہیں ہے, مال غنیمت مقصود تو نہیں ہے. اب ایسا نہیں کہ فتنہ ختم نہیں کرنا اور دین اللہ کا ہو جائے, وہ بھی مقصد نہیں ہے, ہے نا. ایسے ہی قبضہ کرنا ہے, تنگ کرنا ہے کسی کو, تو یہ ہے کہ اللہ کا یاد بہت ضروری ہے. اور کیوں اللہ کو یاد کرو؟ لعلکم تفلحون, شاید کہ تمہاری فلاح ہو جائے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ثبات اور اللہ کا ذکر جو کثرت سے کرنا ہے, اور یہ میدان جنگ میں فلاح اور کامیابی کا راز ہے. تو وہ میدان جنگ جو کہ دشمن کے ساتھ جس میں مارکہ پیش ہوتا ہے وہ بھی, اور آج کا جو میدان جس میں میں اور آپ ہیں, وہ گھر کا میدان ہے, وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, وہ ماں باپ اور بچوں کا ہے, وہ کوئی بھی معاملہ ہے, کسی بھی میدان میں ये दो चीजें जो है वो बहुत अहम है। फिर तीसरी चीज कही गई और वो क्या है, वअतीउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। तो आप देखिए कि तीसरी चीज जो है वो क्या है कि अतात करनी, किसकी, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। तो मतलब ये है कि जब जो भी काम करें तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक करें, अल्लाह के की रजा के लिए और रसूल अल्लाह के तरीके के मुताबिक करें, अतात करनी है। अब ये नहीं कि मुश्किल लग रहा है और नहीं नहीं हम नहीं कर सकते और ये कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल है ना, नफ्स के खिलाफ चलना बड़ा मुश्किल है, नफ्स तो बुराइयों पर उकसाता है लेकिन कहें कि नहीं हम नहीं ये कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं कुरान पढ़ सकते, बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं हम अब वो फराइज नहीं अदा कर सकते जो इस्लाम हमसे चाहता है। तो असल बात क्या है कि इस्लाम हमसे वो चाहता नहीं जो हम कर नहीं सकते। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हमें अतात करनी है, तो इस चीज को भी हमने जो है वो लाजिम पकड़ना है। तो यहां पर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात का मकसद ये है कि जंग के मैदान में जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पूरी अतात की जाएगी तो फौज एक डिसिप्लिन में जो है ना वो जकड़ जाएगी, फौज के अंदर कामिल जो है वो नज्म व ज़ब्त कायम हो जाएगा। और अगर अतात ना की तो फौज ढीली हो जाएगी, है ना, हवा उखड़ जाती है, धर्म भरम हो जाते हैं लोग ना। तो इसी तरह कुरान की क्लास में शिरकत करनी है या कोई भी आप दीन का अच्छा मिशन आप हासिल करना चाहते हैं, मस्जिद बनाई है आपके, इस्लामिक लिटरेचर है उसको आम करना चाहती हैं, आप कुरान फैलाओ मुहिम चलाना चाहती हैं, आप उरियानी और फहाशी का मुकाबला करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, तो उसमें जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत के जरिए आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, ये बहुत अहम है। फिर इसके साथ ही चौथी जो पुरानी हदायत है वो क्या है, वला तनाजाऊ, कि तुम लोग आपस में जो है वो तनाजा नहीं करो। तो यहां पर जो है जिस अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाई गई है वो क्या है कि आपस में झगड़ो नहीं, वला तनाजाऊ। अब आपस में झगड़ना नहीं है, अब एक काम करना ही है तो अब झगड़ना नहीं है, क्यों नहीं झगड़ना। अब दो बातें और बताई जा रही हैं कि झगड़ने के नतीजे में दो नुकसान होंगे। पहला क्या है, फतफशलू, कि तुम लोग जो है वो कमजोर हो जाओगे, बुजदिल हो जाओगे। और दूसरी बात क्या है, वत्तज हबारी हुकुम, कि तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, दुश्मन की नजरों में हकीर हो जाओगे। ये जो बाहमी झगड़े होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि इंसान कमजोर हो जाता है और शैतान बहुत आसानी से वार करता है। जब इत्तहाद नहीं है, इतमाद नहीं है, तो फिर क्या है कि इंसान जो है वो कमजोर हो जाता है और दुश्मन बड़ी आसानी से वार करता है। अब मसलन देखें, अब घर के अंदर है मियां बीवी झगड़ते रहते हैं, अब इज्तमाइयत की जिंदगी में जब मिलजुल कर घर में रहते हैं, मियां बीवी हैं, बच्चे हैं, और क्या है कि आपस में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एक दूसरे को अपनी राय की कुर्बानी करनी पड़ती है, है ना। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हर वक्त हर एक को खुश रखा जा सके। अब देखिए मसलन अब खाना पका है, नमक तेज हो गया, तो मेरे दादा कहा करते थे, उनसे पूछना कि खाना कैसा था, ठीक था, तो उन्होंने कहना कि खाना बड़ा अच्छा था, तो फिर किसी ने खाना तो कहना कि इसमें कम था या ज्यादा, तो कहते थे इससे क्या फर्क पड़ता है, नमक ज्यादा हो तो थोड़ा लगा के खा ले और नमक कम है तो ज्यादा लगा के खा ले, कुछ नहीं बोलते थे आगे से, पता नहीं चलता था कि कोई मसला है। और इसी तरह वालदे मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमेशा कहते थे भी बड़ा मजा आया, और बाद में बाज औकात घर वाले हंसते भी थे कि इसकी अब्बा जान तारीफ कर रहे थे, है ना। तो असल बात क्या है कि हमेशा एक जैसी चीज नहीं पक सकती ना। तो अब ये नहीं कि बर्तन तोड़ दिए हैं, खाना ही नहीं खाया और कहा कि मेरे पास से उठा लो खाना ना, और मुंह बना लिया, तो आप सोचिए कि क्या इस तरह इस्तेमाइयत की जिंदगी गुजर सकती है। इसी तरह अब शौहर की तरफ से कोई कमी बेशी हो गई है तो अब बीवी नहीं कि वो मुंह बसोर कर बैठ गई, साइड पर होकर बैठ गई और फिर नाराज हो गई और बोल नहीं रही आपस में, है ना। तो अब क्या है कि कुछ तो कमी बेशी करनी है। आप मसलन गाड़ी को अपनी रोड पर जब निकालते हैं तो क्या ट्रैफिक आपकी मर्जी की होती है ना। क्या आप जब तेज जाना चाहती हैं, आप जल्दी जाना चाहती हैं, तो आपको जो है वो आपका राइट होता है कि आप जो चाहे करती चले जाएं। आप देखती हैं कि दूसरे जो है वो कैसे चला रहे हैं, उसका राइट है कि मेरा राइट है ना। आप गिव एंड टेक, उस पर जिंदगी जो है वो गुजरती है। तो अगर आप झगड़ना शुरू कर दें कि नहीं, तो फिर क्या है कि जिंदगी की गाड़ी रुक जाएगी। मियां बीवी की गाड़ी और जो घर की गाड़ी है, मियां बीवी उसके जो दो पहिए हैं, इसी तरह जो आम गाड़ी है जो रोड पर हम चलाते हैं, इसी तरह वालदेन और बच्चे जो हैं इनका भी आपस में क्या है कि ये नहीं है कि आपस में हर वक्त लड़ते झगड़ते रहें। कभी भी एक बात याद रखें, इस पूरी दुनिया में हत्ता के बादशाह के घर में, अमीर तरीन कोई घर में, कोई शख्स जो लखपति और करोड़पति है, कोई काम भी उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना है कि आपने इन हालात में जो जिंदगी गुजारनी है, तो अब क्या है कि ये सारे असूल याद रखने हैं, सारे असूल याद रखने हैं, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की अतात करनी है। क्योंकि आपस में मियां बीवी की लड़ाई होती है ना, तो जो बेसिक फाउंडेशन है वो कमजोर जब पड़ती है, तो फिर क्या है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। जब बीवी शोहर का एहतराम नहीं करती तो बच्चे भी नहीं करते, फिर इर्द गिर्द के लोग भी नहीं करते, फिर हवा ही उखड़ जाती है ना। इसी तरह शोहर जब अपनी बीवी का एहतराम नहीं करता, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, तो इर्द गिर्द के लोग भी नहीं करते, है ना, इज्जत नहीं रहती, सोसाइटी में इज्जत नहीं रहती। बच्चे अगर अपने वालदेन का एहतराम नहीं करते तो फिर लोगों को क्या जरूरत है कि एहतराम करें, है ना। वालदेन अगर अपने बच्चों के लिए जो है वो उनके ऊपर पर नहीं अपने फैलाते और उनको अपने परों में ढांप नहीं लेते और उनके अच्छे बुरे को उनको अच्छे बुरे हैं उनको संभाल कर उनकी तरबियत की फिक्र नहीं करते, तो फिर दुनिया को क्या जरूरत है, दुनिया तो उनको जलीलो खार करेगी ना, है ना। तो इससे क्या उसूल पता चलते हैं कि नंबर वन जो है वो दिलों में एतमाद और जमाओ और एतमाद होना चाहिए और ईमान होना चाहिए और अल्लाह के फैसलों पर राजी होना चाहिए। दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र कसरत से, कैसे भी हालात है, घर के हालात कितने ही शदीद और सख्त क्यों ना हो, कितने ही मसाइल क्यों ना हो। और इसी तरह बीमारी है, सेहत है, औलाद है, औलाद नहीं है, इन्हीं मसाइल से लोग गुजर रहे हैं ना, लेकिन पीट रहे हैं, रो रहे हैं, ना शुक्री है, उसमें और वक्त जाया हो जाता है। हालात बदलेंगे नहीं, हमें अपने नुक्ता नजर को बदलना है। अल्लाह तो कहते हैं मैं आजमा रहा हूं इस दुनिया में, किसी को दे के किसी से ले के, किसी को अता करके किसी को महरूम करके, किसी को सिर्फ बेटियां ही देता हूं, सिर्फ बेटियां ही देता हूं, किसी को कुछ भी नहीं देता, यानी ना बेटी ना बेटा। एक औरत जिसके पास औलाद नहीं थी वो एक दफा कहने लगी अल्लाह मुझे बेटी ही दे दे, और जिसको बेटियां मिलनी थी वो रो रही थी कि अल्लाह तूने मुझे ही बेटियां दे दी, मेरा घर ही अल्लाह ने देख लिया बेटियों के लिए। एक दफा एक किसी बच्ची के दादा कहने लगे कि अल्लाह ताला ने बेटियों के लिए हमारा घर देखा हुआ है, तो मेरे बच्चों के भी बेटियां और मेरी बेटियों के भी बेटियां, है ना। तो बाज औकात फिर इंसान ऐसी बातें करता है लेकिन भूल जाता है कि अल्लाह मुझे आजमा रहा है, तो क्या है अल्लाह का जिक्र। तीसरी चीज अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात, कि मसाइल मुश्किलात परेशानियां वो मैदान जंग में हो या आम जो हम मेरे और आपके हालात हैं, तो उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात, कुरान का मताला और हदीस का, सुन्नत का मताला होगा, उसवा रसूल का मताला। और चौथी बहुत अहम बात है कि झगड़ना नहीं है। आप याद रखिएगा, जिस घर में लड़ाई होती है उस घर से बरकत उठ जाती है, मियां बीवी में लड़ाई होती है तो उस घर में रहमत नहीं फिर होती, बच्चों में और माँ बाप में लड़ाई होती है तो फिर वहां पे बरकतें नहीं होती। अगर हमें अल्लाह की रहमतें बरकतें चाहिए, अगर मुसलमान फौज को अल्लाह की रहमत और बरकत चाहिए, तो ये जो झगड़े हैं इसको खत्म करना होगा। आज मुसलमान इतने हकीर और जलील क्यों हैं, इनकी हवा क्यों उखड़ गई है। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, अगर इतनी तादाद में पत्थर हों, पहाड़ बन जाए, रेत के जर्रे हों, सहरा बन जाए, पानी के कतरे हों, समंदर बन जाए, लेकिन ये कि आप देख लें कि मुसलमानों का कोई वजन नहीं, मुसलमानों की कोई आवाज नहीं, मुसलमानों का खून इतना सस्ता है जितना कि पानी सस्ता नहीं है, इज्जतें लूटी जाती हैं मुसलमानों की, कहीं कुछ खराबी होती है तो नाम लिया जाता है कि मुसलमानों ने किया है। तो असल बात क्या है कि आज मुसलमान खाना जंगी में मसरूफ हैं, आपस में फिरकाबंदी बहुत है, झगड़े लड़ाइयां। तो क्या कहा जा रहा है कि झगड़ना मत, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, है ना। तो झगड़ने के दो नुकसान हैं, एक तो कमजोरी और दूसरा हवा का उखड़ जाना। फिर पांचवी चीज कही गई और वो क्या है, वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सबर से काम लो, यकीनन अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। जब इख्तलाफ होते हैं ना, घर के अंदर इख्तलाफ होता है छोटी सी बातों में, आप कहती हैं मुझे कारपेट बड़ा चाहिए, शोर कहता नहीं छोटा भी अच्छा है, ठीक है ना, आप कहती हैं कि व्हाइट वॉश इस तरह की होनी चाहिए, शोहर कहता है या बच्चे कहते हैं कि नहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसका रंग सफेद नहीं होगा, फलां रंग का होगा। आप कहती हैं बहुत ही वो तो पेंडू सा लगता है, वो कहते हैं नहीं मुझे तो यही अच्छा लगता है। आप कहती हैं रोज गंदा हो जाता है, बच्चे बड़े धब्बे डालते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं यही अच्छा लगता है, है ना। छोटी छोटी बातों में इख्तलाफ होता है ना। आप कहती हैं ग्रोसरी जुमे की शाम को कर लूँ ना, हफ्ता इतवार में मैं ये कबाब भी बना के रख लूंगी, सब्जियां मैं काट लूंगी, धो लूंगी, सारी चीजें समेट लूंगी और फिर मैं सारी तैयारी कर लूंगी। कहते हैं नहीं शॉपिंग जो हम करेंगे तो हफ्ते को करेंगे, इतवार को करेंगे, है ना। दावत पे इख्तलाफ हो जाता है, अब कर लें या ना करें। मेन्यू पे इख्तलाफ हो जाता है ना। छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं, आप खुद उन पर गौर करें। तो इख्तलाफ में अपनी राय की कुर्बानी, ये बहुत अहम है कि अपनी बात मनवाने की बजाय अगर अपनी राय की इंसान कुर्बानी कर देता है, इसी को सब्र कहते हैं। ये सब्र क्या है, ये कहीं से खरीदना थोड़ी है, राय को कुर्बान कर दें। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लेते हैं, हफ्ते को कर लेंगे, इतवार को कर लेंगे, चलो अभी अच्छा ये काम कर लेते हैं, बाद को वो कर लेंगे, है ना। तो छोटी छोटी बातों में जो है हम सब्र करें, सब्र करें। कोई चीज नहीं मिल रही है ना, तो उसमें सब्र करें कि अल्लाह ताला इसमें बीमारी है, शिफा नहीं हो रही, इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन अभी अल्लाह ने शिफा नहीं लिखी, तो सब्र करें। तो ये लंबा चौड़ा है ये इसके मानी कि बर्दाश्त करना, सब्र करना। वो ये चीज अल्लाह ताला ने बताई कि जब ये तुम औसाफ इख्तियार करोगे, ये पांचवा वसफ, और आखिर में कह दिया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और ये चारों सिफतें और पांचवी सिफत जो इख्तियार करते हैं दरअसल वो साबिरीन होते हैं, और जो साबिरीन होते हैं फिर अल्लाह ताला की मैयत उनको हासिल होती है, हर वक्त हर हाल में अल्लाह उनको उनका रफीक होता है। ये इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह की मैयत जब मिल जाए तो दोनों जहान की सारी दौलतें उसके मुकाबले में हीच है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मैदान जंग के मौके पे खुतबा दिया कि ऐ लोगों, दुश्मनों से मुकाबले की तमन्ना ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला से आफियत मांगो, और जब नागुजीर तौर पर मुकाबला हो ही जाए तो फिर सब्र को लाजिम पकड़ो, सबात को लाजिम पकड़ो, और समझ लो कि जन्नत तलवारों के साए में है। मतलब क्या है कि असल बात क्या है कि फिर तुम्हें मेहनत भी करनी होगी और फिर सब्र भी करना होगा। तो ये है जिहाद की कामयाबी की कुरानी हदायत। फिर फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीन खरजू मिन दियारहिम, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से निकले थे। ये कौन लोग थे जो अपने घरों से निकले थे? काफिरों के बारे में कहा जा रहा है, अहले मक्का के बारे में कहा जा रहा है। और काफिर जब अपने घरों में निकले थे तो उनका हाल क्या था, बता रहा हूं बता रन कि वो लोग जो थे वो हक से अकड़े हुए निकले थे, मुतकब्बिराना अंदाज में निकले थे। तो कुरान बता रहा है कि वो तो बदमस्त थे, वो तो सरकिश हो गए थे, अल्लाह की नेमतें जब पाई तो शुक्राने की बजाय गुरूर में मुब्तला हो गए, तुगयानी में आ गए, है ना। तो तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना, इसलिए तो पीछे ये हुक्म दे दिया गया कि वज़कुरुल्लाह कसीर लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि जंग में भी अल्लाह को कसरत से याद रखना है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि काफरों के से रंग ढंगा इख्तियार किया करो कि जो अपने घरों से इतराते हुए निकले थे। वरिया नासी, और दूसरी उनकी बीमारी क्या थी कि लोगों को अपनी शान दिखाते हुए उनके अंदर रियाकारी थी। तो अहले ईमान जो हैं, बताया जा रहा है कि अहले ईमान जंग भी इबादत है, जंग के मौके पे भी जो है वो फखर नहीं कर सकते, गुरूर नहीं कर सकते अपनी कसरत तादाद पर, अपने असबाब पर, अपने माल पर, घुमंड में मुब्तला नहीं हो सकते। किसी मरहले में भी अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि इंसान जो है वो मगरूर हो जाए। और ना मकसद ये है कि लोगों का दिखावा, है ना, बहादुरी का मुजाहरा लोगों के लिए नहीं करना कि खूब जिहाद किया, बल्कि क्या है काफरों की तीसरी बुराई क्या थी, वह यसुदूना अन सबीलिल्लाह, कि उनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। उनके साथ कुफार के लश्कर के साथ गाने बजाने वाली लौंडियां थी जो रास्ते में रुक रुक कर डांस कर रही थी, शराब की महफिलें वो मुनक्किद कर रहे थे, जो जो कबीले रास्ते में मिलते थे उनके ऊपर वो अपनी ताकत शानो शौकत और कसरत तादाद को जाहिर करते, अपने सरो सामान का रोब जमाते थे, डींगे मारते थे कि भला कौन है जो आज हमारे मुकाबले में आ सकता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनके बारे में बता रहे हैं, है ना। और इसी तरह कहते हैं कि जब अबू सुफियान जो है اپنا تجارتی قافلہ بچا کر واپس چلا گیا تو اس نے ابو جہل کے پاس ایک قاصد بھیجا، کہا کہ اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ بہت سے قریش کے سرداروں نے کہا کہ ابو جہل واپس چلے جاتے ہیں کہ اب وہ قافلہ تو ہمارا بچ کر آ گیا تو ضرورت نہیں آگے جانے کی، لیکن ابو جہل اپنے کبر اور غرور میں اور شہرت پرستی کے جذبے میں اس نے قسم کھائی کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک کہ چند دن مقام بدر میں پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منا لیں، یعنی جب وہاں جائیں گے جشن منائیں گے کچھ دن تک پھر ہم واپس آئیں گے۔ اب اس کا نتیجہ تھا اس جشن کا اور اس کی اس قسم کا، اس کے اس غرور کا اور دکھاوے کا، اس کا اور اس کی فوج کا کہ اس کے بڑے بڑے ساتھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، جنگ کے موقع پہ اگر منع کیا جا رہا ہے کہ دکھاوا اور فخر اور غرور جائز نہیں ہے، اور کافروں کا یہ عمل ولا تکون کاللذین، کا ان کافروں کی طرح تم نہ ہو جانا جنہوں نے یہ کیا، تین برائیاں، ایک بطرن، دوسرا ریان ناسی، تیسرا یسدون عن سبیل اللہ، ہے نا۔ آپ مجھے بتائیے، شادی بیاہ کے موقع پر آپ افطاری کرا رہی ہیں، آپ قربانی دے رہی ہیں، ذبح کر رہی ہیں کہ دمبا کتنا بڑا ہے، ہے نا، آپ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، آپ دولت مند ہیں اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو کیا نیکی کے کاموں میں دکھاوا اور فخر و غرور جائز ہے؟ نا حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے کہ انسان کرے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، لیکن یہ ریا، دکھاوا، یہ بطرن کی کیفیت خاص طور پہ پائی جاتی ہے ہمارے اندر اور پھر عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ بما یعملون محیط، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، میں اور آپ بھی جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو خوب خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں یاد دلا رہے ہیں کہ وہ موقع بھی یاد کرو، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ جب شیطان نے خوبصورت بنا کر ان کو دکھائے، اعمالہم، ان کے اعمال، کہ جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر دکھائے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان جو ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں، جو اس وقت اس علاقے کا ایک بڑا سردار تھا، وہ آیا اور اس نے کہا اہل مکہ سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے ان سے کہا تھا آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ، میں تمہارا ہمسایا، میں تمہارا دوست، میں تمہاری مدد کے لیے تیار، اور چونکہ وہ اپنے علاقے کا ایک بڑا سردار تھا تو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا۔ دار الندوہ میں جب آیا پارلیمنٹ قریش کی میں مشورہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس وقت کس شکل میں آیا تھا؟ شیخ نجدی کی روپ میں آیا۔ غزوہ بدر میں آیا تو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور دو باتیں کہیں، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اتنا مال ہے تمہارے پاس، اتنا اسلحہ، اتنی تعداد، وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ، اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ سوچیں کہ سینہ تان کر جب کوئی بندہ اور اتنا بڑا سردار وہ یہ کہے، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور جب اس نے ان دونوں گروہوں کو دیکھا، ہے نا، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے دیکھا کہ دونوں گروہوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا ہے، اور اس نے دیکھا کہ ایک طرف مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، ہے نا، نکسا علی عقبیہ، تو الٹے پاؤں پھر گیا، وقالا، اور کہنے لگا، انی بری منکم، میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں تم سے بری ہوتا ہوں، انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ آج جب آپ نے ترجمے اور روٹ ورڈ کے بعد تلاوت سنی تھی، آپ نے غور کیا تھا ان آیتوں پر تلاوت کرنے والے جو تھے انہوں نے بہت اونچا چلے گئے تھے، بہت زور تھا ان کے اندر۔ تو آپ غور کیا کریں، جب کوئی تلاوت کرتا ہے تو اتار اور چڑھاؤ اس کا کیسا ہوتا ہے، جن کے پاس اللہ کا علم ہے نا، وہ بہت خوبصورت پھر موقع کی مناسبت سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت تلاوت کی تھی، اور کیا تھا جو آج آپ نے کیسٹ میں سنی تھی، کہ اس وقت شیطان نے یہ کہا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، کیوں اب میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، پہلے تو سینہ ٹھوک کر سینہ تان کر یہ کہہ رہا تھا کہ تم پر کوئی غالب بھی نہیں آئے گا، تم جیتو گے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرے سارے لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں، تو کہنے لگا انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، یعنی فرشتوں کا لشکر، माला तरौना, जो तुम लोग नहीं देखते। और फिर फातिका, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला है। अब आप देखिए कि अब जो है सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया हुआ शैतान जो है वो बता रहा है कि जो मुझे नजर आता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। और उसे पता था ना अपने करतूतों का, और समझ गया सारी बात को, और वहां से वो हट गया, है ना। और ये नहीं बताया कि जो है वो मतलब तुम्हारा अंजाम क्या होगा जब अल्लाह के लश्कर है, बस खुद साइड से वहां से हट गया, है ना। उनको कुछ नहीं अब सरजनश की। अबू जहल ने जब सुराका और उसके लश्कर की पसपाई देखी कि ये क्यों हट रहे हैं, और फिर देखा कि मेरी हिम्मत भी टूट रही है, सुराका ऐन वक्त पर जा रहा है, सुराका बिन मालिक जो एक बड़े इलाके का सरदार है और ये अपने लश्कर को लेके जा रहा है, तो उसने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो। तो सुराका ने भागते हुए जो कहा कि असल बात यह है कि जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ अबू जहल ने कहा कि असल में ये खुफिया तौर पर इसने रसूल अल्लाह से साजिश कर ली थी, सुराका ने, तो इसलिए अब ये यहां से जो है ना वो भाग रहा है। तो इस तरह उसने अपने लश्कर को जो है वो संभाला दिया। तो ये शैतान जो कि शैतान लईन है, ये इसकी आदत है कि इंसान को बुराई में मुब्तिला करता है, फिर अलग हो जाता है ना, ऐन मौके पर अलग हो जाता है। और कई जगह और भी इसके इस फरेब का और इसकी इन तदबीरों का जो है अल्लाह ताला कुरान में जो है वो जिक्र करते हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा कि एक तो ये कि शैतान इंसान का दुश्मन है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हीले अख्तियार करता है, वसवसे डालता है, बाज़ औक़ात सामने आकर धोखा भी देता है। दूसरा ये कि शैतान को अल्लाह ने यह कुदरत दी है कि वो मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर हो सकता है ना, लेकिन वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि जरूरी कोई शख्स जो है वो गुमराह हो जाए, जरूरी ये बात नहीं है। तो असल बात क्या है कि सिर्फ वसवास है, खन्नास है, एक रास्ता दिखाता है जो बुराई का है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता कि आप बुराई जरूर ही करने लग जाएं। तो यहां पे भी उसने कहा कि अब जो कुछ मैं देख रहा हूं वो तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, और मुझे अल्लाह से डर लगता है, और अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला है। इज यकूलुल मुनाफिकूना, जबकि मुनाफिकीन ये कह रहे थे, वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग था, वो क्या कह रहे थे, उनके दिलों में क्या रोग था, यानी कुफर था, शिर्क था, मुनाफ़कत थी। यहाँ मुनाफ़िकों का अलग से जिक्र किया जा रहा है, और फिर वो लोग सब लोग जिनके दिलों में रोग लगा हुआ था, यानी कुफर, शिर्क, इस्लाम से दूरी का, इनकार का, गर रहा उलाई दीनहुम, कि इन लोगों को तो इनके दीन ने खबत में मुब्तिला कर रखा है। तो मुराद ये है कि ये लोग दुनिया परस्त लोग थे, इसलिए मुसलमानों को देख देख कर ये कह रहे थे कि मुट्ठी भर मुसलमान हैं और चले हैं अहले मक्का से मुकाबला करने। तो मदीना में जो मुसलमान मुनाफिक थे, जो मदीना में और यहूदी थे, वो आपस में क्या कह रहे थे कि ये दीनी जोश में दीवाने हो गए हैं, इनकी तबाही यकीनी है, लेकिन नबी ने कुछ ऐसा जादू इन पर कर रखा है कि आंखों देखे ये मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। गर्र हाउलाई दीनहुम, के इनको इनके दीन ने दीवाना कर दिया है, गर्रा धोखे में डाल दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाही फइन्नल्लाह अजीजुन हकीम, हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा जबरदस्त और दाना है। वलौ तरा इज यतवफ्फल्लज़ीन कफरू, काश तुम उस हालत को देख सकते। अब यहाँ पे किस हालत का जिक्र किया जा रहा है कि एक तो हालत उस वक्त वो वाली हालत है ना जो दुनिया में हालत है काफिरों की, या गज़वा बदर में काफिरों का क्या हाल हुआ, जो उनको शिकस्त हुई, जो उनको नदामत उठानी पड़ी, जो उनके लोग कत्ल हुए, जो उनके लोग जख्मी हुए, जो कैदी हुए। एक तो दुनिया में है ना कुफर के लिए जो है वो खसारा, और दूसरा खसारा कब है, जब इंसान इस दुनिया से उठ जाता है, जब उसको मौत मिलती है, यानी दुनिया के बाद। तो क्या कहा जा रहा है, काश के तुम उस वक्त का एहसास कर सकते, तुम उस हालत को देखते। इज यतवफ्फल्लज़ीन कफरू, के वो काफिर जिन लोगों ने कुफ्र किया है, वो लोग जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया है, कि जब उनको वफात दी जाती है, जब फरिश्ते उनकी रूहें कबज करते हैं, तो उस वक्त हालत क्या होती है उन लोगों की, फरिश्ते क्या करते हैं। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ये कि इज ये तवफ्फल लजीना कफरुल मलाइका, कि जब फरिश्ते जो हैं वो काफरों की रूहें कब्ज करते हैं, और फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि अल मलाइका तो यद्रिबूना वजूहाहुम, तो रूहें कब्ज करते वक्त फरिश्ते उनके चेहरों पर मारते जाते हैं, जरबे लगाते जाते हैं, वह अदबारहुम, और उनके कूलों पर चोटे लगाते जाते हैं, वजूकू अजाब अल हरीक, और कहते जाते हैं कि लो अब जलने की सजा का मजा चखो, अब जलने की सजा भुगतो, जालिका बिमा कद्दमत ऐदीकुम, यही वो जजा है जिसका सामान तुम्हारे हाथों ने पहले से तैयार करके भेजा है, यानी तुम्हारे हाथों ने पेश की ये तैयारी की है। व अन अल्लाह लैसा बिज़ुल्लामिन लिल अबीद, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। तो ये है सख्त सजा जो मिलती है कि दुनिया में भी और उसके साथ ही जो है वो मौत के वक्त ही, क्योंकि मौत के साथ ही इंसान की दूसरी जिंदगी जो है वो शुरू हो जाती है, तो उस वक्त भी उनको जो है वो सजा मिलती है। और अल्लाह ताला यहाँ पर जो तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं वो ये है कि उनकी दुनिया भी बर्बाद और उनकी आखिरत भी बर्बाद। और फिर अल्लाह का ये कहना कि लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, ये अरबी में मुबालगा, एक खास अंदाज है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह बंदों पर जरा भी जुल्म करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स जो है वो जरा भी अच्छा काम करने वाला होता, यानी बातों का जो गाजी है जब किरदार का गाजी नहीं है तो अल्लाह तो फिर उसको पकड़ता ही है, और बड़ा सख्त पकड़ता है। और ये तो उनके अपने अमाल है जो इनके आगे आ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला जो है मिसाल के तौर पर जो है फिरौन की मिसाल देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि असल बात क्या है कि तुम देखो कि जैसा कि कौम फिरौन और इससे पहले की कौमों को पेश आया, सिर्फ फिरौन की मिसाल नहीं है, फिरौन जैसी और कौमें, कदाब आले फिरौन, यही मामला इनके साथ भी इसी तरह पेश आया था जैसा कि फिरौन और इसके साथियों के साथ, जैसा कि फिरौन और उससे पहले की कौमों के साथ, कदाबे जैसा कि हाल हुआ आले फिरौन का, वल्लज़ीना मिन कब्लिहिम, और जो उनसे पहले थे, जो उनसे पहले कौमें थी, कफरू भी आयात इल्लाही, क्या था गुनाह उनका, क्या कसूर था, उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया, फअखज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह ने उनके गुनाहों पर फिर उन्हें पकड़ लिया, इन्नल्लाहा कवीयुन शदीद, लोगो अल्लाह की पकड़ जो है ये बड़ी सख्त है। फिर जब अल्लाह कुफर पर, इनकार पर, जुल्म पर जब पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। और फिरौन को अल्लाह ताला ने कैसा पकड़ा था, आप देखें कि मिस्र के तख्त से उठाकर समंदर की लहरों के इस तरह सपुर्द किया उसके पूरे लौ लश्करों के साथ कि उसको तौबा की तौफीक भी ना हुई। और दूसरी कौमों का भी क्या हाल हुआ, किसी पर पत्थरों की बारिश, किसी पर चंगाड़, किसी पर जमीन से अजाब, किसी पर आसमान से अजाब, ज़ालिका बिअन्नल्लाहा लम यकू मुगय्यिरन नेमतन अनअमहा अला कौमिन, अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हुआ कि वो किसी नेमत को जो कि उसने किसी कौम को अता की हो। जालिका, ये सब ऐसा क्यों होता है, कुरैश का बदर के मैदान में हाल ऐसा क्यों हुआ, फिरौन और पिछली कौमों की बर्बादी उनको क्यों मिली, बी अन्नल्लाह लम यकू, ये कि नहीं है अल्लाह ताला मुगैरन बदलने वाला, नेमतन किसी नेमत को, अनअमहा जो अल्लाह ने इनाम किया है अल्लाह कौमिन किसी कौम पर, यानी अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक बदलने वाला नहीं है, हत्ता युगय्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, जब तक के वो कौम अपनी हालत को खुद नहीं बदल लेती, जब तक के वो कौम अपने तर्ज अमल को खुद ना बदल ले। इसी बात को हाली ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का, है ना। तो असल बात क्या है कि जब कोई कौम अपने तर्ज अमल को खुद नहीं बदलती तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मैं भी उसके हाल को नहीं बदलता, जब कोई कौम हदायत नहीं लेना चाहती तो मैं भी उसको हदायत से महरूम कर देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नल्लाहा समीउन अलीम, और अल्लाह जो है वो खूब सुनने वाला है और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, अल्लाह को खूब पता है कि कौन क्या कर रहा है ना। तो आज उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं, जब तक उम्मत मुस्लिमा अपने हालात को खुद नहीं बदलेगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह मुसलमानों के हालात जो है ना वो बदल दे। कदाब आले फिरौन, پھر فرمایا کہ جیسا آل فرعون کا حال ہوا، والذین من قبلہم، اور ان قوموں کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، کذبوا بآیات ربہم، یہ اسی ضابطے کے مطابق تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. اب دوسری دفعہ پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ پہلے کہا کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، پھر کہا کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فأهلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ بذلہ من للعبید، کہ اللہ ظلم کر دے اپنے بندوں پر، لیسا بذلہ من للعبید. پیچھے کہا آیت نمبر جو ہے وہ 52 میں کہا کہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اور یہاں پہ آیت نمبر 54 میں کہا فأهلکناہم بذنوبہم. اور آپ دونوں جگہ دیکھ لیں کہ کیسا سخت انداز ہے نا، ایک جگہ پکڑ لیا اور یہاں کا ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آل فرعون کو تو غرق کر دیا، ڈبو دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب ظالم لوگ تھے. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی جو مخلوق ہے اس میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ شرہ بدترین، برے، برے ترین. دواب یعنی جو بھی زمین پر چلتے ہیں اس میں سب سے برے کون ہیں؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے حق بات کو قبول ہی نہ کیا. فہم لا یؤمنون، اور وہ اس پر ایمان ہی نہیں لاتے. اور خاص طور پر کون سے لوگ؟ الذین احتا، جنہوں نے جو ہے وہ عہد کیا ہے نا، الذین احتا، جن سے آپ نے عہد کیا. منہم، ان سے، یعنی آپ نے معاہدہ کیا. اور یہاں پہ مدینہ کے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. مدینہ میں جب رسول اللہ آئے تھے تو اہل مدینہ میں جو یہودی تھے مدینہ میں، ان سے معاہدے ہو گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا رسول اللہ کا ہم ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم ینقضون عهدهم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں. فی کل مرتن، ہر دفعہ. وہم لا یتقون، اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے، یعنی ذرا سا ان کو جو ہے وہ خیال نہیں آتا. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو بھی انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ باہمی تعاون کا معاہدہ کیا تھا تو وہ اس کو پھر پورا نہیں کرتے تھے، مشرکین کا ساتھ دیتے تھے. ان کو تو رسول اللہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، پھر وہ اہل مکہ کا ساتھ دیتے تھے. تو یہاں اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے.